आरव और आयु का जो बीच वाला वीडियो था उसे किसी ने एडिट करके अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था, साथ ही उस वीडियो को अडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया था। आरव अच्छे से जानता था कि जरूर ये काम रोहन का है, क्योंकि पिछली बार भी रोहन ने ही वो वीडियो शूट किया था और उसी के जरिए मिस्टर ओबेरॉय को ब्लैकमेल किया था। आयु को गौरवी जी के पास छोड़कर कबीर और आरव रोहन से मिलने पुलिस स्टेशन जा रहे थे। आज कबीर के बजाय आरव गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कबीर उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठा था। कबीर ने आरव की तरफ देखकर पूछा, क्या वो दादी को संभाल लेंगी? दादी ने गलती से वीडियो देख लिया तो इस बार वो आप पर ज्यादा गुस्सा करेंगी। नहीं संभाल पाएगी तो ये उसकी प्रॉब्लम है, अकेला मैं ही क्यों दादी का गुस्सा झेलूं, उसे भी दादी का गुस्सा सहन करना होगा। तो मुझे दादी का नाम लेकर स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हो, ऑलरेडी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, आरव चिल्लाकर बोला। जब भी आरव के किसी मामले में गौरवी जी इन्वॉल्व होती थी तो आरव की मुसीबतें और बढ़ जाती थीं। कबीर ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और सामने की तरफ देखने लगा, फिर कुछ पल रुककर वो वापस बोला, आपने अभी तक उस वीडियो को हटाने के लिए क्यों नहीं कहा? हमारे पास इतने एडवांस हैकर्स मौजूद हैं कि उस वीडियो को हटाने के साथ साथ जिसके भी फोन में वो वीडियो होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं, फिर इतना झंझट लेने की क्या जरूरत है? हम जितना देर करेंगे लोग उसे उतना ही देखेंगे। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, पहले मुझे उस रोहन सिंह से बात करनी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? पुलिस स्टेशन में बैठकर भी वो अपनी चीप हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, आरव ने गुस्से में जवाब दिया। कबीर को आगे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो लोग पुलिस स्टेशन आ चुके थे। आरव ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और कबीर का वेट किए बिना ही तेज कदमों से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगा। आरव वहां जाते ही सीधा पुलिस कमिश्नर के केबिन में गया। मिस्टर श्याम देशमुख भी उसका वेट कर रहे थे, इसलिए किसी भी पुलिस वाले ने आरव को अंदर जाने से नहीं रोका। आरव को देखते ही मिस्टर देशमुख अपने चेयर से उठे और उसके पास आकर कहा, मैं आप ही के आने का इंतजार कर रहा था मिस्टर खुराना, रात से वो यहाँ है लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, पीटर भी रास्ते में चकमा देकर फरार हो गया, पीटर के बिना हम उसे ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रख सकते, हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। मिस्टर देशमुख शांति से जवाब दे रहे थे लेकिन उनकी बातों से आरव का गुस्सा बढ़ रहा था। वो तेज आवाज में बोला, अगर सबूत नहीं है तो इकट्ठा कीजिए, क्या वो काम भी मुझे करना होगा? मुझे उससे मिलना है, वो भी अकेले में, आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर देशमुख आरव को रोहन सिंह चौहान की सेल की तरफ लेकर गए। रोहन की शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि पूरी रात उसके साथ अच्छा खासा टॉर्चर हुआ होगा। उसकी आंखें लाल थीं और माथे पर एक जगह चोट का निशान भी था। जैसा कि आरव ने कहा था, मिस्टर देशमुख आरव और रोहन को वहां उसी सेल में छोड़कर चले गए। रोहन को उस रूम में रखा गया था जहां पूछताछ की जाती है, वो कमरा साउंड प्रूफ था। उनके जाते ही आरव ने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं आरव को वहां देखकर रोहन भी गुस्सा हो गया। वो अच्छे से जानता था उसके साथ जो भी हुआ वो आरव ने ही किया था। आरव को देखते ही रोहन जोर से चिल्लाकर बोला, अब तो सुकून मिल गया ना तुम्हें मेरी लाइफ और मेरी जॉब मुझसे छीनकर? तुमने ठीक नहीं किया आरव खुराना, एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने दो, तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का जीना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रोहन सिंह चौहान नहीं। तुमने जो हरकत की है क्या तुम्हें लगता है उसके बाद मैं तुम्हें यहां से बाहर निकलने दूंगा? आरव सर्द आवाज में कहा और फिर रोहन का गला पकड़ के उसे दीवार के लगा दिया। आरव की पकड़ इतनी टाइट थी कि एक बार के लिए रोहन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आरव का हाथ रोहन के गले पर कसता जा रहा था। रोहन ने खांसते हुए कहा, मैंने क्या किया है? बोलो मैंने क्या किया है? रोहन की कहते ही आरव ने तुरंत उसे छोड़ दिया। फिर उसने अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाई। रोहन हैरानी से कभी आरव के चेहरे को देख रहा था तो कभी उस वीडियो को। रोहन का हैरान चेहरा देखकर आरव का गुस्सा बढ़ रहा था। वो सख्त लहजे में बोला, इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है? यू नो वॉट, मुझे पता था कि तुम हमेशा से मेरे पीछे हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। तुमने अपनी हदें तभी पार कर दी थी जब तुमने मिस्टर ओबेरॉय को वो वीडियो भेजा था। उस बात को भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इसे अडल्ट वेबसाइट पर एडिट करके पोस्ट करने की गलती तुमने जो की है ना, उसके बाद मैं यहां तुम्हारी जान भी ले लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा रोहन सिंह चौहान। लेकिन मैंने ये नहीं किया है, मेरा यकीन करो आरव, रोहन हड़बड़ाते हुए बोला, उसने सचमुच ये नहीं किया था। आरव को रोहन की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने नामे सिर हिलाकर कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी प्लानिंग की मैं दाद देना चाहूंगा। लगता है तुम्हें पहले से पता था कि तुम अरेस्ट होने वाले हो, तभी सारी चीज शेड्यूल पर लगाई थी या हमारे रिसेप्शन होने का वेट कर रहे थे ताकि लोगों के सामने ये प्राइवेट वीडियो सर्कुलेट कर सको जिसमें कुछ भी रियल नहीं है। इसे तो मैं हटवा दूंगा और जिसने भी इसे प्रमोट किया है उस हरेक इंसान पर केस कर दूंगा, पर तुम्हारा क्या रोहन सिंह, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलते हुए आरव ने फिर से रोहन की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसी पल आरव रोहन की जान ले लेगा।
फलक फलक,
रोहन अटकते हुए फलक का नाम बोलने की कोशिश कर रहा था। उसने ये सब वीडियो फलक से ही एडिट करवाए थे और उसके अलावा फलक ही इसका सच जानती थी। आरव ने रोहन को छोड़ दिया। रोहन की हालत खराब हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और चेहरा लाल हो गया था। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक सांस में खाली कर दिया।
मेरी असिस्टेंट फलक ने उन सब वीडियो को एडिट किया था। मेरे अलावा वो इसका सच जानती है। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें फलक से बात करनी चाहिए, मेरा यकीन करो। वो वीडियो मैंने सर्कुलेट करने के लिए नहीं बनाई थी, मुझे बस टाइम आने पर आयु को ब्लैकमेल करना था ताकि वो अपने कदम पीछे न खींच ले। वो तुमसे प्यार करने लगी थी, इसलिए मुझे डर था। बस तभी, बोलते हुए रोहन रुक गया। अनजाने में रोहन ने वो सच्चाई आरव से बता दी थी जो वो उसे कभी नहीं बताने वाला था। आरव गर्दन टेढ़ी करके सर्ब निगाहों से उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। रोहन के रुकते ही आरव ने गुस्से में कहा, मुझे आधी अधूरी बातों से सख्त चिढ़ है रोहन सिंह चौहान। आरव के लहजे से रोहन इतना समझ गया था कि वो इस वक्त कोई भी झूठ सुनने के मूड में नहीं है। साथ ही रोहन के पास भी अच्छा मौका था जब वो उसे सच बताने के बदले में कुछ निगोशिएट कर सकता था। रोहन ने आरव की आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना किसी भाव के कहा, मैं तुम्हें सारा सच बता भी दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सच बताने के बाद मैं इन्हीं जेल की चार दीवारों के बीच सरता रहूंगा। अगर बाहर निकल भी गया तो मेरी पोजीशन और मेरा नाम बिगड़ जाएगा। क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि मुझे सब कुछ फिर से वो दे पाओगे? तब तो मैं तुम्हें पूरा सच बता भी सकता हूँ।
रोहन की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आरव के फेस पर स्माइल आ गई। वो एक ईविल स्माइल थी और उसने उसी लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त मेरे साथ निगोशिएट करने के हालात में हो? मैं तुम्हें यहाँ जान से मार कर भी निकल जाऊंगा तो भी मुझसे कोई नहीं पूछने वाला, और तुम खाली फोकट में दुनिया से निकल लोगे। सच तो तुम्हें बताना पड़ेगा, बेहतर है कि सीधे तरीके से बता दो, शायद फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच भी सकूं। आरव की बात सुनकर रोहन की नज़रें झुक गईं। वो सच कह रहा था। रोहन की हालात ऐसी नहीं थी कि वो किसी तरह का सौदा कर सके। अच्छा हुआ तुमने फलक का नाम बता दिया, उस तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, और उसने ये किया है उसकी सज़ा भी वो भुगतेगी। बाकी तुम्हारी फालतू बातें सुनने का ना तो मेरे पास टाइम है, और तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही बकवास है। ये मुझे इरिटेट करती है और मेरे सिर में दर्द होने लगा है, आरव ने बिना किसी भाव के कहा और वहाँ से जाने लगा। रोहन के पास ये आखिरी मौका था जब वो आरव से बात करके उसे सब बता सकता था। आरव ने वहाँ से जाने के लिए कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि रोहन ने पीछे से कहा, ठीक है, मैं पूरी बात बताने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे कोई प्रॉमिस तो नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। जो मैंने किया है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बिना किसी गलती के तुम मुझे सज़ा नहीं दे सकते आरव खुराना, शायद ये तुम्हारे उसूलों में भी नहीं होगा। आरव की बात सुनकर आरव रुक गया। उसने रोहन की तरफ देखकर भौंहें उठाकर पूछा, मैंने कहा मुझे सच सुनना है रोहन सिंह चौहान, आधी अधूरी बातों से मुझे चिढ़ होती है। क्या तुम बिना कुछ छुपाए मुझे सब कुछ सच सच बता सकते हो कि तुम कैसे आयु से मिले और किस तरह उसे मुझसे बदला लेने के लिए कन्विंस किया? एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि मेरी वाइफ जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी ही एक इंट्रोवर्ट इंसान भी है। वो इतना बड़ा कदम आसानी से नहीं ले पाती। मुझसे बदला लेने के लिए वो उसी इंसान के साथ फाइट क्लब में ट्रेनिंग ले रही थी जो मेरे लिए काम करता है। उससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? जहान उसे सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग कर सकता था, बाकी वो एक प्योर हार्टेड पर्सन है तो कभी ये चालाकियाँ उसे आएगी ही नहीं। कुछ ही दिनों में आरव आयु को अच्छे से जान गया था। रोहन ने आरव को सब कुछ बताने के लिए हाँ में सिर हिलाया और कहा, कुछ दिनों ही में काफ़ी अच्छे से जान गए हो तुम उसे। ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। आरव ने रोहन से कोई वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस पर यकीन करके रोहन उसे सब बताने के लिए तैयार था। रोहन के हाँ कहते ही आरव उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। हालांकि आरव को सारा सच बताकर रोहन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला था, पर इस वक्त उसे इन सब से बाहर निकालने के लिए एकमात्र आरव ही ऐसा इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। चलिए जी, अगले पार्ट में मिलते हैं। क्या लगता है, रोहन सारा सच बताएगा या अभी भी घोटाला करेगा? सारा सच जानने के बाद आरव का क्या रिएक्शन रहने वाला है? रोहन से सब जानने के बाद शायद उसके दिल में आयु के लिए जो प्यार है वो बढ़ जाए और वो उसे माफ़ कर दे, या उसका उल्टा हो जाए, रोहन कुछ ऐसा बता दे जिसके बाद आरव उससे और नफरत करने लगे। ये तो कल ही पता चलेगा।